आरव अपनी फैमिली के बारे में पता लग रहा था, खासकर कबीर के बारे में, ताकि वो माहिरा से निपट सके। जब से आरव को सब कुछ याद आया था, तब से वो ऑनलाइन उनके बारे में ही सर्च कर रहा था, पर उसे कुछ नहीं पता चला, सिवाय इस बात की कि मुंबई में उसकी सारी प्रॉपर्टी बिक चुकी थी और अब वहां पर कुछ और ही बन चुका था। आरव फ्रस्ट्रेट होकर अपने केबिन में बैठा हुआ था, तभी नीचे से उसके पास एक कॉल आया। उसकी तबीयत खराब होने का सुनकर माहिरा उससे मिलने के लिए खुराना एम्पायर्स पहुंच चुकी थी और अब आरव को नीचे बुला रही थी। आरव ने कॉल कट किया और फिर इरिटेट होकर कहा, जाना ही पड़ेगा वरना वो ऊपर आ जाएगी। क्या आज भी कबीर माहिरा के लिए काम करता है? अगर ऐसा है तो मैं माहिरा के जरिए कबीर तक जरूर पहुंच पाऊंगा। आरव ने खुद को माहिरा से मिलने के लिए तैयार किया और फिर लिफ्ट से सेकंड फ्लोर पर पहुंचा, जहां युवराज के केबिन में माहिरा बैठी हुई थी। आरव को देखते ही माहिरा ने हल्की मुस्कुराहट दी, तो वहीं युवराज उठकर उसके पास आते हुए बोला, मुझे मिस लूथरा से पता चल रहा है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें ऑफिस नहीं आना चाहिए था, तुम्हें बाहर का क्लाइमेट सेट नहीं करता है। मैं ठीक हूँ डैड, डोंट बॉदर फॉर मी, आरव ने जवाब दिया। माहिरा उनकी हर एक बात को गौर से सुन रही थी, आखिर उसे आरव के बारे में सब कुछ जानना जो था। उसने अपने मन में कहा, ये आरव का कुछ ज्यादा ही ख्याल रखते हैं, क्या उसकी तबीयत सही नहीं रहती? देखने में तो फिट नजर आ रहा है, फिर ऐसा क्या है जो मुझसे छुपा हुआ है? सोचते हुए माहिरा के चेहरे के एक्सप्रेशंस थोड़े सीरियस थे। फिर आरव ने उसकी तरफ देखा तो उसने फिर से अपने चेहरे के भावों को नॉर्मल कर लिया। उसके बाद युवराज अपनी सीट पर वापस बैठ चुके थे, तो वहीं आरव माहिरा के बगल वाली सीट पर बैठा था। उसने माहिरा की तरफ देखकर कहा, मिस लूथरा, आप यहाँ आई गई हैं तो मीटिंग के बारे में बात करते हैं। इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हर शख्स से मैं मिलना चाहता हूँ, चाहे उसका काम कितना भी छोटा क्यों न रहा हो। इस प्रोजेक्ट से काफ़ी सारे लोग जुड़े हुए हैं, एक प्रोफेशनल मीटिंग बुलाने में टाइम लग जाएगा। अगर तुम चाहो तो मैं एक पार्टी थ्रो कर सकती हूँ जिसमें सारे लोग आ जाएंगे और आखिर में हम मीटिंग भी कर लेंगे, माहिरा ने जवाब दिया। उसे आरव की बात मानने से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ऐसे में वो माहिरा से उसका सब कुछ भी मांग लेता तो माहिरा आरव को खुशी खुशी सब दे देती। आरव ने कुछ पल सोचा और फिर उसकी बात पर हामी भरते हुए कहा, ठीक है फिर, पार्टी की टेंशन आप मत लीजिए, वो मैं अरेंज कर लूँगा, आप बस इसमें इन्वॉल्व हर एक शख्स को बुला लीजिए। ठीक है, इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए कुछ खास लोग यहाँ पर आए हुए हैं, तो हो सके तो जल्दी अरेंज करना ताकि मुझे उन्हें फिर से यहाँ बुलाने के लिए स्पेशल इनविटेशन ना भेजना पड़े, माहिरा बोली। वो दोनों काफ़ी प्रोफेशनली बात कर रहे थे। दो दिन, सिर्फ दो दिन का टाइम चाहिए मुझे, क्या आप मुझे वो टाइम दे पाएंगी? आरव ने माहिरा की आंखों में देखते हुए काफ़ी इंटेंसिटी से कहा। एक पल के लिए माहिरा भी उसके चेहरे में खो गई। माहिरा ने बिना कुछ बोले हाँ में सिर हिलाया। उसने धीरे से मन ही मन कहा, तुम दो दिन की बात कर रहे हो, मैं तुम्हें यहाँ अपनी पूरी ज़िंदगी देने के लिए तैयार हूँ। सब कुछ फाइनल हो जाने के बाद आरव अपनी सीट से उठते हुए बोला, ठीक है फिर, फाइनल रहा कि दो दिन बाद पार्टी होगी, बीच में ज़रूरत पड़ी तो मैं आपको कॉल कर सकता हूँ? हाँ, कभी भी, चाहो तो आधी रात को भी कॉल कर लेना, मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी, माहिरा ने मुस्कुराकर कहा। माहिरा का जवाब उन दोनों को काफ़ी अजीब लगा, पर फिर भी आरव ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसने युवराज की तरफ देखा, जब भी मीटिंग में आरव और युवराज साथ होते थे तो आरव ही उसे हैंडल करता था। युवराज ने आंखों की आंखों में आरव के डिसीजन पर हामी भर दी थी। उन्हें बाय बोलने के बाद आरव वहां से चला गया। रात के लगभग 10 बज रहे थे। आयु इस वक्त ऊपर आरव के कमरे में थी और उसी के आने का इंतजार कर रही थी। दिन में टाइम नहीं मिलने की वजह से आयु शॉपिंग नहीं कर पाई, तो अभी भी उसने आरव का शर्ट और नीचे अपने शॉर्ट्स पहन रखे थे। आयु अपने दादा मिस्टर विक्रांत ओबेरॉय से कॉल पर बात कर रही थी। उसके आगे किताबों का ढेर फैला हुआ था और वो साथ में कुछ नोट्स बना रही थी। आयु के मोबाइल का स्पीकर ऑन था। उसने परेशान स्वर में कहा, दादू, बस लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करनी है, क्या आप मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देंगे? मुझे अब डैड से मांगने में शर्म आ रही है। इसमें शर्म कैसी? तुम अर्जुन की मर्जी के खिलाफ घर छोड़कर गई हो, लेकिन उसने तुम्हें फाइनेंशियली बहुत सपोर्ट किया है, विक्रांत जी ने जवाब दिया। आयु से बात करते हुए वो भी अपने लैपटॉप में वीडियो एडिट कर रहे थे। फिर उन्होंने कुछ पल रुककर कहा, चलो बताओ कितने पैसे चाहिए? बस 5 लाख, आई प्रॉमिस, डॉक्टर बनते ही मैं आपके सारे पैसे, आयु बोलते हुए रुक गई क्योंकि अचानक उसकी नज़र दरवाजे पर गई, जहां हाथ बांधे न जाने कब से उसकी बातें सुन रहा था। उसे देखकर आयु चुप हो गई। क्या हुआ, अब साफ क्यों सूंघ गया? पैसे तो भेज दूंगा, लेकिन एक एक पैसे का हिसाब देना होगा कि कहाँ कितने खर्च किए, विक्रांत जी ने कहा। तभी उन्हें कॉल कट होने की आवाज़ सुनाई दी। वो कॉल आरव ने कट किया था और इस वक्त आरव आयु को सर्द निगाहों से देख रहा था। उसे इस तरह देखा हुआ पाकर आयु की नज़रें अपने आप झुक गईं। उसने धीरे से कहा, मुझे ऐसे मत देखो, मुझे बहुत अजीब लगता है। एज क्या है तुम्हारी? अचानक आरव ने पूछा। आयु नज़रें उठाकर आरव की तरफ हैरानी से देखने लगी। तभी आरव बोला, उम्र पूछी है मैंने तुमसे मिसेस खुराना, अब ये मत कहना कि बाकी औरतों की तरह तुम्हें भी अपनी उम्र बताने में शर्म महसूस होती है।
ऐसा कुछ नहीं है, थोड़े दिनों बाद मेरा बर्थडे है और मैं 23 की हो जाऊंगी, आयु ने जवाब दिया। उसकी उम्र जानने के बाद आरव ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, इतनी बड़ी हो गई फिर भी हरकतें काफी चाइल्डिश हैं तुम्हारी। तुम्हें अगर फीस पे करवानी है तो अपनी फैमिली को कॉल करने की जरूरत नहीं है, कल तुम्हारी फीस पे हो जाएगी। आयु ने आरव की बात पर हामी भरी और धीरे से उसे थैंक्स कहा। वो किताबें समेटने लगी थी तभी आरव ने उसे खींचकर अपने करीब कर लिया। आरव इंटेंसिटी से आयु की आंखों में देख रहा था। उसने उसी अंदाज में कहा, आगे से मेरे बारे में कुछ पूछना है तो मुझसे जान लेना, मेरी केस फाइल चाहिए थी तो मुझसे मांग लेती, हॉस्पिटल जाकर डॉक्टर नेहा से बात करने की क्या जरूरत थी। आयु की हरकत वाकई काफी शर्मिंदगी वाली थी। उसने सब कुछ आरव के पीछे से किया था, ऊपर से आरव ने उसे रंगे हाथ पकड़ भी लिया था। आयु की नजरें झुक गई थी तभी आरव ने उसका चेहरा ऊपर करके थके स्वर में कहा, ठीक है मत करो मेरी बात पर यकीन, आगे से कुछ कहूंगा भी नहीं, पर एक बात याद रखना, तुम्हें यकीन हो या ना हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मुझसे दूर जाने की इजाजत नहीं है तुम्हें और ना ही मैं कहीं जाने दूंगा। प्यार से एक्सेप्ट करो या फिर जबरदस्ती से, रहना तुम्हें मेरे साथ ही होगा, तो अपने इस छोटे से दिमाग से निर्वाण कश्यप का ख्याल निकाल दो। आखिरी की कुछ लाइन्स बोलते हुए आरव की आवाज सर्द होने लगी। इतना कहकर आरव ने आयु को छोड़ दिया, वो वॉशरूम में चला गया था। वहीं उसके जाने के बाद आयु ने धीरे से कहा, इसे उस हॉस्पिटल वाले आदमी के बारे में बताऊं या नहीं, इसे समझ क्यों नहीं आता है, मुझे भी जानना है कि क्या मैं सच में इसकी वाइफ थी, अगर थी तो हम दोनों को किसने मारा, इसने बताया हमारी बेटी थी तो क्या उस दिन जो औरत आई थी उसी ने हम तीनों को मारा। आयु के दिमाग में हजारों सवाल उठ रहे थे और अब उसके सिर में भयंकर दर्द होने लगा।
आयु ने कुछ पल सोचने के बाद आरव को सब कुछ बताने का डिसीजन लिया। आखिर आरव को सब बताना जरूरी भी था, आयु को उस शख्स से खतरा भी हो सकता था, यही सोचकर वो आरव को सब कुछ बताने जा रही थी। आरव को सब बताने की जल्दबाजी में आयु ने जल्दबाजी में बाथरूम का दरवाजा खोला। आरव वो बोलते हुए आयु रुक गई क्योंकि आरव इस वक्त शावर के नीचे थे और नहा रहा था। आरव ने कुछ नहीं पहन रखा था तो आयु ने जल्दी से दूसरी तरफ पलट गई और एम्बैरेसमेंट से अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं।